हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम का नया चैप्टर शुरू हुआ है, एट्थ कैंटो आठवां स्कंध है, अध्याय चार शुरू हुआ है और श्लोक संख्या एक। अध्याय का नाम है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। शुक उवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्म शान पुरोगमः मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरे। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तदा उस अवसर पर जब गजेंद्र का उद्धार हो गया, देव ऋषि गंधर्वा देवता ऋषि तथा गंधर्व ब्रह्म ईशान पुरोगमा ब्रह्मा तथा शिवजी इत्यादि ने वर्षा की कुसुम आसारम फूलों का आवरण शंसंतः प्रशंसा करते हुए कर्म दिव्य कर्म उस गजेंद्र हरे भगवान का। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों गंधर्वों तथा ब्रह्मा शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। हमारे पीछे दोहराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया तो सारे ऋषियों गंधर्वों तथा शिव इत्यादि देवताओं ने भगवान के इस कार्य की प्रशंसा की और भगवान तथा गजेंद्र दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। तात्पर्य, इस अध्याय से स्पष्ट है कि देवल ऋषि नारद मुनि तथा अगस्त्य मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कभी कभी किसी को शाप देते हैं, किंतु ऐसे महापुरुषों का शाप वास्तव में वरदान होता है। पिछले जन्म में घड़ियाल एक गंधर्व था तथा गजेंद्र राजा इंद्रदुम्न था, ये दोनों शापित हुए किंतु दोनों को लाभ मिला। इंद्रदुम्न को हाथी के जन्म में मोक्ष मिला और वह वैकुंठ में भगवान का पार्षद बना तथा घड़ियाल को उसका गंधर्व पद पुनः मिल गया। हम प्रायः देखते हैं कि बड़े संत या भक्त का शाप शाप न रहकर वरदान होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान्ति विरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हमें भी शाप मिला हुआ है। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। गजेंद्र जी का वैकुंठ गमन, इससे पहले जो अध्याय था उस अध्याय का नाम था गजेंद्र की समर्पण स्तुति। तो ये प्रसंग जो है जिसमें कि आज प्रभुपाद जी अपने परपट में बता भी रहे हैं, कि जो दोनों शापित हुए, एक थे गंधर्व हुहु, नाम था हुहु, और गलतियां देवताओं से भी होती रहती है ना, तो वहां पर भी देवल ऋषि ने एक गलती के कारण करके रहे थे, ये भी स्नान कर रहे थे, जिस प्रकार आपको याद होगा मणिग्रीव और नलकुवर एक बार ये भी स्नान करते, नग्न स्नान करते स्त्रियों के साथ, और वहां पर कौन पहुंच गए, नारद मुनि जी पहुंच गए। अब स्त्रियों को तो तुरंत लाज आई और उन्होंने अपने तन को ढक लिया, लेकिन ये नलकुवर और मणिग्रीव, क्योंकि पिता का पैसा बहुत था, कोषाध्यक्ष थे, देवताओं के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर, और बड़ी अच्छी सैलरी थी उनकी भी, तो अच्छा पैसा हो तो फिर बहुत कम होता है कि बच्चे यहां भागवतम सुने। तो फिर वो सब लोग कली पुराण के ग्रंथ पढ़ते हैं या उन्हीं का संग करते हैं लोगों का, तो बिगड़ जाते हैं ज्यादातर, तो उनके बच्चे भी बिगड़ गए कुबेर जी के, तो खाना पीना ऐश करना उनका जीवन का लक्ष्य बन गया। और एक दिन इस प्रकार नग्न होकर स्नान कर रहे थे नदी में, तो कौन आ गए, नारद जी पहुंच गए वहां पर, और उनको देखकर स्त्रियों ने तो अपने तन को ढका, लाज आई, लेकिन ये दोनों नग्न खड़े रहे, और नारद जी जैसे भक्त उन्होंने तुरंत देखा और उनको लगा कि इनके पापा को तो मैं जानता हूं, है ना, अच्छे संबंध है हमारे, अच्छे कुल से हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे बिगड़ गए तो क्या करना चाहिए, शाप देना चाहिए, लेकिन ऐसा शाप देंगे जिससे क्या हो, इनके पिताजी भी ज्यादा नाराज ना हो, है ना, और इनको भी अक्कल आ जाए, है ना, और इनका भी फायदा हो। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम अगर इस प्रकार नग्न ही तुम्हें रहना पसंद है और भूल गए सारे वैष्णव टिकट, तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष नग्न रहता है, कोई कपड़े नहीं पहनता है ना, तो सर्दी गर्मी सब खड़ा रहता है इस प्रकार। तो उनको भी बेचारों को कहां मिला, यमला अर्जुन करके दो वृक्ष बनकर आए, कहां पर, नंद महाराज के आंगन में, जैसे यहां पर भी वृक्ष हैं दो, है ना, नल और मणिगिरी, और नंद महाराज का घर जहां पर कृष्ण रहे, और नंद महाराज का घर है वृंदावन है, तो कृष्ण और बलराम के सामने जो है बिल्कुल उसी शेप में खड़े हैं, थोड़ा सा वो पत्थर बना दिया हम लोगों ने, अदरवाइज ऐसे ही था यमला अर्जुन टाइप। तो किसी दिन अगर कार्तिक मास में अगर कोई ऐसी लीला हो जाए तो अब घबराना नहीं, कि भगवान कृष्ण जो है यहां तो उखल तो नहीं है, मतलब किसी पुजारी को बांध कर घसीटते हुए ले जाकर दो पेड़ों के बीच में अगर फंस कर पेड़ गिरा दे तो समझ लेना ये वो पुरानी लीला है, ये यमला अर्जुन। तो श्राप था लेकिन नंद महाराज के आंगन में, बताइए, और रोज कृष्ण की लीला भी देखते थे, और भगवान ने जो उनको उद्धार किया, उन्होंने परिक्रमा करी और भगवान के धाम चले गए। तो देवताओं को या जिनको भी इस प्रकार के श्राप मिलते हैं, तो अगर तो शुद्ध भक्त देता है तो भक्तों का फायदा ही होता है, तो कितने लोगों को श्राप चाहिए, हाथ खड़ा करो, बहुत कम लोग आएंगे, लेक्चर के बाद पूछेंगे। तो अभी हमें लगता है शाप लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो यहां पर भी देखते हैं कि ये जो थे हुहु गंधर्व थे, गंधर्वों के अंदर एक अपना ही अलग से अहंकार होता है, उनके सुंदरता, सुंदर कंठ, गला इतना सुंदर होता है, गंधर्व गाते हैं जब तो अच्छे अच्छे जो है स्तंभित हो जाते हैं। तो एक बार ये नारद जी जो है ये भी बताते हैं जब पूर्व जन्म में ये गंधर्व ही थे, मतलब पहले तो दासी पुत्र थे, लेकिन दासी पुत्र होने से पहले ये ब्राह्मण ऐसे कोई शब्द उपवर्ण नाम के गंधर्व थे, उपवर्ण नाम के। तो क्या हुआ कि इन्होंने इनको एक बार देवताओं ने संकीर्तन कीर्तन मेला करने की अरेंज किया, देवताओं ने भी किया, वो भी करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो कीर्तन मेला रखा है बड़ी। तो नारद ये जो थे उपवर्ण नाम के जो गंधर्व थे, ये बड़े सुंदर थे, बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर कंठ कुछ होता था। तो अप्सराएं जो हैं सदैव इनके साथ ही रहती थी। तो जब ये गए वहां पर, जैसे आईएलएस में उनको बुलाते हैं, कीर्तन मेला में बुलाते हैं, तो कहते फैमिली लेकर ना आए, रूम का मैं तो लीडर्स को जो है शेयरिंग रूम मिलते हैं इस तरह से, तो फैमिली वैमिली लेकर नहीं आते जाते, इस बार नहीं आए थे, लेकिन ये जो है अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को लेकर पहुंच गए, और इधर दो चार कोई हवा खेल रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, और इस प्रकार देवताओं की सभा में पहुंचे कीर्तन के लिए। कीर्तन करना था, भगवान का गुणगान करना था, इनकी भी बारी आई, इनको कहा आप भी कुछ गाइए। इन्होंने भगवान के गुणगान की जगह अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मतलब फिल्मी सॉन्ग शुरू कर दिए, मतलब कुछ और ही शुरू कर दिया गाना। बड़ा गुस्सा आया और वहां पर सभा में इनको क्या मिल गया, शाप मिल गया, जाओ तुम इस सभा में रहने बैठने लायक नहीं हो। इसलिए कई बार हम देखते हैं इस कौन के जनरल्स में बात करते हैं कि केवल हरे कृष्णा कीर्तन गाइए, है ना, हमारी संस्था हरि नाम का प्रचार के लिए है। और प्रभुपाद जी भी जब टॉमस्किन पार्क में थे और उस पेड़ के नीचे खड़े थे, तो उन्होंने वैसा कोई भजन नहीं गाया, मेरा आपकी कृपा से, ऐसा कुछ नहीं गाया। क्या गाया? हरे कृष्ण महामंत्र गाया। और वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते आज पूरे संसार ने जो हमारे इस्कॉन ने जो प्रगति करी है वो हरे कृष्ण महामंत्र के आधार पर की है। आप देखते होंगे कि कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, किसी का चाहे क्रिया हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, किसी का शादी का प्रोग्राम हो, तो एक ही मंत्र चलता है, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। यह हजार के नोट के समान है अगर भौतिक दृष्टि से बात करें, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर हर तरह का फल है, इससे ऊंचा मंत्र नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? महामंत्र। महा शब्द का मतलब जो टॉप मोस्ट है, जैसे किसी को बोलते हैं महामूर्ख, तो वो मूर्खों में महान है, उससे ज्यादा बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। उसी तरह मंत्रों में अगर महान है तो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो वहां पर भगवान की कीर्ति का गान करने की जगह उन्होंने उल्टी सीधी करा और शाप मिला और दासी पुत्र बन गए। लेकिन जो शाप मिला उसका भी एक फायदा यह हुआ कि शाप मिलने के बाद, दासी पुत्र रहने के बाद भी उनको क्या प्राप्त हुआ? भक्तों का संग प्राप्त हुआ। और अगर किसी को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है तो उसके जीवन की ये सबसे ऊंचा फल है, परफेक्शन ऑफ लाइफ है उसकी, अगर किसी व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। तो चार महीने चतुर्मास के समय उन भक्तों की सेवा करी, पूजा करी, अर्चना करी, उनकी सब कुछ किया और उनसे सीखा। और जब इतना कुछ सीख लिया और वो चले गए तो माता के देहांत के बाद एक सांप ने काट लिया मम्मी को, उनकी माता जी। और नारद जी कहते हैं, व्यासदेव जी को कथा सुना रहे थे अपनी, तो बोलते हैं कि मेरी जो मेरा मुंह का पाश था, मेरी मां मुझे अपने मुंह से बांधना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि जब सांप ने डस लिया तो वो जो पाश का जो चक्कर था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि डिवोटी जानता है कि क्या चीज मुझे बांधती है और क्या चीज मेरे लिए फेवरेबल है भक्ति के लिए। तो कई बार इस संसार का अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन जो हमें सो कॉल्ड हम परिवार में ढूंढते हैं, है कि नहीं? पत्नी चाहती है मुझे पति खूब प्यार करे, पति चाहता है कि मेरी पत्नी सिर्फ मुझे प्यार करे, बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा प्यार करे, छोटा कहता है मुझे ज्यादा प्यार करे। हर व्यक्ति इस जगत में प्यार ढूंढ रहा है और वो प्यार एक किस्म का ऐसा रोग बन जाता है, आसक्ति ऐसी हो जाती है कि जो हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन जो भक्त हैं उन्हें पता है कि इस संसार में ये सारे पाश का काम करते हैं, मोह पाश अर्थात मोह से बांध देना, और ऐसे पाश के द्वारा फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है और उस मोह पाश के चक्कर में, उस अफेक्शन के चक्कर में, उन कसमों को पूरा करने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए वो जीवन भर चलता रहता है। अगर ये बातें ज्यादातर नए लोग सुने तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने की, भाई प्यार और लव नहीं होना चाहिए रिलेशन में। हमारा जो प्यार और लव है अविधि पूर्वकम है। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं ये देवता लोग भी मुझसे तो लेकर देते हैं सारा सामान, और क्या करते हैं अविधि पूर्वकम, अविधि से करते हैं। ये जानते नहीं कि ये मुझसे लेते हैं, मैं सभी कारणों का कारण हूं, ये भी मेरे ही कारण है। लेकिन जो भक्त ये जानता है कि भगवान सर्व कारण कारण है और ये देवता लोग उन्हीं के अंश हैं, वो वास्तव में विधि पूर्वक सब कुछ कर सकता है। तो हमारा जो इस संसार में माता पिता बहन भाई देश के प्रति जो सुकल प्रेम दिखाई देता है ना, वो क्या है अविधि पूर्वक। मतलब कि हमें विधि ढंग से नहीं मालूम। जब तक भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे अपने प्रेम का, अपने परिवार का, अपने संबंधों का, तब तक यहां के संबंध हमें कुछ समय के लिए प्यारे लग सकते हैं, लेकिन बाद में जीवन भर काटते हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में पता चलता है कि ये जो संसार है, जो परिवारवाद है, ये सब कुछ, ये एक घने जंगल के समान है। इस जंगल में व्यक्ति रास्ता भूल गया है, हर जगह घने वृक्ष हैं, सूर्य की रोशनी तक नहीं मिल रही, और जब व्यक्ति के पीछे कुछ जानवर पड़ जाते हैं तो ये सारे काम क्रोध लोभ की तरह पीछे पड़े हुए, फिर यहां पर कुछ संबंध भी बन जाते हैं, है ना, डाकू वगैरह मिलते हैं, वो उससे सब कुछ धन छीनना चाहते हैं, उसके खाने का सामान छीनना चाहते हैं। तो ये बताया जाता है परिवार वालों की तरह है, जो हमेशा घर में घुड़गुन घुड़गुन करता रहता है ना, आसानी से नहीं चलता जी। तो इस प्रकार जब उन्होंने बोला मुझे मोह, मेरी माता मुझे मोह से बांधना चाहती थी, होता है मोह के कारण ही तो लोग भक्ति नहीं कर पाते है कि नहीं। आप अगर भक्ति करने जा रहे हैं तो घर वाले क्या बोलेंगे, ये उम्र है, ये कोई उम्र है तुम्हारी, आप पूछो आपकी तो उम्र है, आप चले जाओ, तो वो भी नहीं आएंगे, खुद भी नहीं आएंगे, तुम्हें भी नहीं करने देंगे, होता है कि नहीं। तो या फिर प्यार से बांधेंगे, तुझे भगवान चाहिए या मैं चाहिए, बच्चे को तो मालूम है कि क्या बोलना है, कि मुझे भगवान चाहिए, तो बोलता है मुझे चलो नहीं, नहीं आपको हर एक का अपना अपना आंसर होता है, नहीं बता सकते। लोग बोलते हैं हां हमें, मतलब माता पिता की तरह इशारा करते हैं, हमें भगवान चाहिए। तो माता पिता भी खुश होते हैं और भगवान भी खुश होते हैं। इसका फंडा क्लियर है कि भगवान की तरफ दिल देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के प्रति पूरी करनी है। तो यहां फिर नारद जी हमने बताया कि उस प्रकार उनका फिर भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन होता है, अगले जन्म में फिर वो नारद मुनि की तरफ उनको क्या था इंटर यूनिवर्स वीजा मिल जाता है, तो वो नारद मुनि के। तो यहां पर भी देवल ऋषि ने क्या किया, वो जो अंदर था समुद्र में कौन हुहु महाराज, जो स्त्रियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे, वो भी उन्होंने क्या किया, देवल ऋषि भी अंदर थे पानी में, उन्होंने उनकी जाके टांग खींच दी। अब देखिए मतलब करते हैं कई बार बच्चे लोग आपस में खेल रहे होते हैं, तो कई बार अपने बंदे की टांग खींचने की जगह कोई गायत्री कर रहा हो उसकी टांग खींच दी। ये करते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे, ये स्कूल से बंक करके कहां जाते थे, सीधा गंगा में स्नान करने चले जाते थे स्कूल बंक करके। और क्या करते थे, जितने ऋषि मुनि वहां पर खड़े ब्राह्मण लोग गायत्री कर रहे हैं, अब गायत्री में तो हिलना डुलना नहीं होता, आंखें बंद होती हैं और एक ही दिशा में देख रहे होते हैं लोग, तो जाते थे स्विमिंग करते हुए नीचे और क्या करते थे, इनका पैर खींचते थे किसी का, वो पैर हटाने को लगता मछली आ गई, शार्क ने पकड़ लिया, किसी की धोती खींच देते थे, बड़े परेशान होते थे। और जाओ बाद में डुबकी लगा के देखते थे, वो चारा निमाई उनके पिताजी की शिकायत लगाने जाते थे, तो कहते थे हमारा बच्चा स्कूल वगैरह नहीं जाता, जगन्नाथ मिश्र ये जो है हमारे को तंग करता है, कभी हम टॉयलेट में जाते थे टॉयलेट के दरवाजे बंद कर देता बाहर से, अब टॉयलेट तो ऐसी जगह है जो व्यक्ति काम कर रहे हो जल्दी बाहर आए, अब बाहर कुंडी लग गई हो तो और दयनीय स्थिति हो जाती है। तो उन्होंने बुलाया इधर आओ निमाई, तुम स्कूल नहीं जाते और तुम ये सब करते, कहते नहीं पापा ये देखो मैं तो स्कूल ही गया, इंक लगी हुई हाथ में, देखो ये सब स्कूल से तो आता हूं। निमाई और शरारती होते। तो इस प्रकार जो है यहां पर उन्होंने उनकी टांग खींच दी, तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा और उन्होंने शाप दे दिया, पानी में रहने का मतलब है टांगे खींचनी है, तो जाओ तुम क्या बन जाओ घड़ियाल बन जाओ, क्रोकोडाइल है ना। तो इस प्रकार को श्राप नहीं दिया। इधर से हमारे दूसरे जो थे इंद्रदुम्न महाराज, राजा थे, त्याग किया सब कुछ और भक्त बन गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जहां पर अपने ध्यान समाधि में बैठे थे वहां पर भी भक्त पहुंचे। कौन थे वो? अगस्त्य ऋषि। तो जब ये भी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भक्त हैं, ध्यान समाधि में बैठे हैं, लेकिन मेरे जैसा ऋषि अगर आए है ना तो लोग खड़े हो जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, स्थान देते हैं बैठने के लिए, है ना, पूरा स्वागत किया जाता है। तो कई बार होता है ऐसे ही हम सब लोगों के साथ होता होगा कि जहां पर रोज सम्मान मिलता है एक दिन थोड़ा कम हो जाए तो फिर वो दिन याद रहता है ना, होता ही है ना जी। आपको रोज एक आपका गार्ड सल्यूट मारता है, एक दिन ना मारे आपको लगता है सल्यूट नहीं मारा, इसको सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ये गार्ड चेंज करो सर, क्यों क्या हो गया सर, ये देखते हैं नहीं सल्यूट नहीं मारता है ना। हर चीज आपको रोज मिल रही है, रोज खाने के बाद मीठा मिल रहा है और एक दिन आपको आंवला दे दिया खाने के बाद, आप होगी ये क्या चक्कर है। तो कई बार जिन कंफर्ट जोन में, हम जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं उससे हमारे कंफर्ट्स अगर थोड़े भी कम हो जाएं तो हमारे दुख का कारण बनते हैं। घर में रोज जाते हैं, गर्मी आने वाली है, एक बटन ऑन किया एसी ऑन, कितना डिग्री सेल्सियस, 15-16 डिग्री सेल्सियस, वाह अच्छा लग रहा है। फिर बाहर निकलना है तो छाता लेके निकले गाड़ी तक भी, फिर गाड़ी में बैठे तो उधर भी 16 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, आजकल तो स्कूल में भी है हाँ 16 डिग्री सेल्सियस। तो हर जगह जो है वो कंफर्ट जोन बना के रखे हैं, लेकिन जिस दिन पता चले रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो वो 30 डिग्री को पहुंचेगा, 40 भी पहुंचेगा, 45 भी पहुंचेगा और फिर वो बड़ा दुख का कारण बनेगा, है ना। और इस प्रकार हमारे जहां पर भी हम लोग कंफर्ट जोन को अपना बांध देते हैं जिस एरिया को, वो हमारे फिर दुख का कारण बनता है। तो इसी तरह हम बता रहे थे कि जो इंद्रदुम्न स्वामी थे ये ऋषि थे और जब महागस्त मुनि पहुंचे तो उनको था कि हमको तो हर कोई पूजा पाठ करता है, हमारी हमारा गुणगान किया जाता है, हमारा सत्कार किया जाता है, ये व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, है ना। तो ये किस प्रकार एक मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह, तो इनको क्या चाहिए, शाप दे देते हैं। शाप दिया कौन सा, कि जाओ तुम हाथी की तरह, जैसे उनकी शरीर बड़ा है बुद्धि नहीं है, तो जाओ तुम क्या बन जाओ, हाथी बन जाओ गजेंद्र। और इस प्रकार ये दोनों को शाप मिला और एक दिन हम जानते हैं कि वो घड़ियाल पानी के अंदर थे, गजेंद्र अपने परिवार के साथ गए और वहां पर क्या हुआ, घड़ियाल ने पकड़ लिया। काफी लंबे समय तक युद्ध चला और फाइनली गजेंद्र को अपने पिछले जन्म की स्तुतियां याद आ गई और उन्होंने भगवान की स्तुतियां करना शुरू कर दी, भगवान का इतना सुंदर गुणगान किया। और अब भगवान भी अपने गरुड़ जी के ऊपर बैठकर, भगवान तो भावग्राही हैं, भगवान तो अपने भक्तों के वत्सल हैं, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है, पतित पावन है, तो उनको जब भी पुकारा जाता है हृदय से स्तुतियों के साथ तो भगवान सदैव वहां पर जो है अपने भक्तों की रक्षा करने पहुंच जाते हैं। क्योंकि भगवान का व्रत है, यह भगवान का समझ लीजिए नियत कर्म है, भगवान किसी कर्म में फंसते नहीं है, वो सारे कर्मों से ऊपर है। लेकिन क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को अर्जुन को बोल दिया, अर्जुन तुम घोषणा कर दो, क्या घोषणा कर दो, ना मैं भक्त परनिष्ठ, मेरे भक्त का कभी या उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता, और जब कोई व्यक्ति मुझे समर्पित होगा सर्वधर्मानि परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज, अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारे पापों को समाप्त कर देता हूं और उसको मोक्ष प्रदान करता हूं, ये भगवान की वाणी है, भगवान का गारंटी है भगवान की। योगक्षेम वहामि हम, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करता हूं और जो उसको चाहिए है ना, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं, ये भगवान ने गारंटी दी है। तो अब जब बोल दिया तो वो पूरा भी करना पड़ेगा, वो बात अलग है कि हमारा स्तर हम या हमारा फेथ या हमारी जो प्रार्थना है उसमें दम नहीं होता। कई बार हम लोग बहुत ढीठ है वैसे, किस सेंस में कि जब भगवान की शरणागति लेते भी है ना तो बड़ी कनिंग नेचर के साथ लेते हैं, चतुराई दिखाते हैं भगवान। जैसे उस दिन बता रहे थे कि एक व्यक्ति नदी में था, बोट में था, अचानक तूफान आया तो बोट पलट गई और डूबने लगा, उसने भगवान को पुकारा, भगवान असहाय अवस्था में पुकारा, तो भगवान ने देखा असहाय अवस्था में पुकार रहा और मैंने तो वचन दिया है, तो तुरंत बहुत तेज हवा चलती है, लहर आती है और उस व्यक्ति को पानी के अंदर खींचकर बाहर सतह पर ले आती है, वो भी हाथ हाथ मार के बाहर आ जाता है। पहले अंदर बोलता है भगवान अगर इस बार बचा लिया, मतलब बचा लिया आपने तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा आपको, जैसे हर कोई बोलते ही है। तो बाहर आके कहता है कौन से लड्डू कैसे लड्डू। अचानक एक हवा और तेज चल के फिर पलट के पानी में गिर जाता हूं, कहता भगवान मैं तो पूछ रहा था बूंदी के कि बेसन के। तो हमारे नेचर में कनिंग है, चतुराई दिखाते हैं, वो भी किसके साथ? चतुराष्टकम नहीं लिखा भी किसी ने ना, चौराष्टकम लिखा है। ये चतुराइयों के चतुर है, ये चोरों के भी चोर है, है ना, सभी कारणों के कारण है। लेकिन समस्या क्या होती है, जैसे कई बार आप घर में बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता आपके सामने खड़ा है, और अगर वो कुछ चीज छुपाना चाहे, चलाकी करना चाहे, कुछ चीज छुपा रहा है आपके सामने, तो आप देख लोगे ना क्या कर रहा है, मेरे पीछे छुपा रहा है, अपनी जेब में छुपा रहा है, पलंग के नीचे छुपा रहा है, कोई देख ना ले, आप तो आराम से देख सकते हो, है कि नहीं। या छोटा सा बच्चा आपके घर में कई बार कहता आप आंखें बंद करो मैं कुछ छुपाता हूं, है ना, हम देख लेते हैं कहां पर कर रहा है क्या कर रहा है। या जैसे हाइड एंड सीख खेलते हैं बच्चों के साथ तो हमें मालूम होता है कहां छुपने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है ना। तो उसी तरह जब हम भगवान के साथ चलाकी करते हैं तो भगवान हंस रहे होते हैं क्या कर रही है, क्या कर क्या रही है, मेरे से छुपा रहा है ना, मेरे से चलाकी कर रहे। तो भगवान के साथ चलाकी नहीं चलती, हम चलाकी कैसे करते हैं, भगवान इस बार तो कर दो, भगवान इस बार ये वाली इच्छा मान जाओ, ये वाली पूरी कर दो, तो फिर क्या करूंगा लड्डू बांटूंगा, है ना। और हमने देखा है लोग भगवान से वादे कर करके मुकर जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी बिल्डिंग की, तो नीचे एक ठेकेदार ऊपर था और मिस्त्री नीचे था, बड़ी ऊंची बिल्डिंग 25 माले की बिल्डिंग थी, तो आवाजें मारी हरि बोल, खैर ये तो नहीं बोला वो, तो वैसे उसका नाम ले रहा था, तो चिल्लाया, वो सुन ही नहीं रहा था, वो अपने काम में मस्त था, उसने कैसे ऊपर देखेगा, तो उन्होंने 100 का नोट निकाला फेंक दिया नीचे, तो वो ऐसे उड़ते उड़ते उसके पीछे जाके गया, तो फावड़े से काम करे, तो उसने देखा 100 का नोट, अरे कमाल है 100 का नोट मिल गया, जिम में डाल लिया उसने, उसको लगा ये ऊपर देखेगा, उसने ऊपर देखा ही, उसने कहा कमाल है, दूसरा फेंक 500 का नोट फेंका, फिर उड़ता हुआ नीचे गया, फिर उसने कहा अरे 500 का नोट पड़ा, फिर उसने ऊपर नहीं देखा, उसको फिर जेब में डाल लिया, कहते कमाल है 600 रुपये, ऊपर से परेशान हो गया, आवाजें मारता हूं सुनता नहीं, नोट फेंकता हूं सुनता नहीं, देखता नहीं, उन्हें 1000 का नोट फेंका कि इससे देखेगा शायद, पर आ कहां से, कुछ तो बुद्धि लगाएगा, उसको 1000 का नोट मिला, उसने वो भी जेब में डाल लिया, फिर काम में मस्त, अपने काम छोड़कर नोट ही ढूंढ रहा था उधर उधर। वो ठेकेदार ने क्या करे, पत्थर लिया इतना मोटा और सही निशाना करके मारा, टन करके उसने सर पर लगा, उसने कहा कौन है, कहते एक घंटे से बुला रहा हूं, देखता नहीं है, समझता नहीं है, पैसे 1600 पहले वापस कर। तो हमारी स्थिति भी उसकी तरह, मिस्त्री की तरह है ना। भगवान हमें पुकार रहे, भैया आ जाओ, सर्व धर्मानि परित्यज्यं मां एकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, वापस धाम में आ जाओ, संसार में रहने का फायदा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ यहां मिलता तो उसको जेब में, यहां मिलता उसको जेब में, इधर उधर लगे हुए, फिर लगता है आई एम अ सेल्फ मेड मैन, ये तो मैंने देख लिया, तो मेरा ही है, अगर मैं इधर नहीं देखता तो ये 500 कैसे मिलते, पीछे नहीं देखता तो 1000 कैसे मिलते। और जब पड़ा टन करके, जब पड़ता ना, जब कोई दुख आता है, कष्ट आता है, और पता चलता जिस जेब में डाल रहे थे उसमें छेद था और वो 1600 किसी और के हाथ लग गए, तो फिर आता है भगवान आप ही हैं सब कुछ, बस अब इस बार मान जाओ, इस बार ठीक कर दो सब, फिर अगली बार से कुछ नहीं करूंगा ऐसा। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति वचनबद्ध है कि उनको रक्षा करनी ही करनी है, लेकिन हमारी तरफ से जो होना चाहिए वो ये कि हम लोग भगवान की शरणागति ढंग से नहीं ले पाते। कई बार इस प्रसंग को छेड़ा जाता है कि जैसे द्रौपदी थी, भरी सभा में उन्होंने सबके पास गए कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन हर व्यक्ति धर्म से, सत्य से, कहीं ना कहीं शब्द को देकर बंधा हुआ था, कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली उनको लगा कि मैं अपनी क्षत्रियाणी हूं ना, अपनी भुजाओं का बल है, तो दुशासन ने जब खींचने शुरू किया तो उनको लगा कि मैं खींच लूंगी, मैं बचा लूंगी अपने आप, तो दुशासन के अंदर भी बड़ा शक्ति बहुत बलशाली था वो, तो उसके आगे कहां एक नारी की जो है शक्ति का प्रदर्शन हुआ, उसने साड़ी खींचना शुरू करे। अब उसको रोते रोते भगवान का स्मरण हुआ है, द्रौपदी को भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारने के बाद भी उनका एक हाथ अभी साड़ी पर था और एक हाथ भगवान की तरफ था, हे भगवान हे कृष्ण क्या करो रक्षा करो। और इधर जो है द्वारका में भगवान कृष्ण जो है अपना ऐसे चल रहे हैं कि मैं बस कुछ करना चाहता हूं, कुछ करना चाहूंगा। तो रुक्मिणी पूछ रही इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कहते मेरे भक्त की लाज जो है संकट में है, मुझे बचाने जाना। तो कहते जाते क्यों नहीं हो, कहते बस जाना चाहता हूं बट अटका हुआ है कुछ थोड़ा सा। वो क्या अटका हुआ था, समर्पण जो है ना वो थोड़ा सा परसेंटेज कम थी, 50% समर्पण और 50% अपने बल पर था। लेकिन फाइनली जब उसको लगा द्रौपदी को कि यस अब कोई नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं बच सकता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को पूरी तरह समर्पित किया, दोनों हाथों को ऊपर करके भगवान का स्मरण किया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान को पुकारा। बस पुकारने की देर थी और भगवान वहां पर उपस्थित थे। वो जितना चरखी में जैसे व्यक्ति घुमाता है ऐसे खींचता रहा लेकिन नहीं हो पाया, एंड नहीं मिल पाया साड़ी का, भगवान ने रक्षा करी। तो भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए जब गजेंद्र ने स्तुतियां करी तो भगवान वहां तुरंत पहुंच गए। भगवान को याद है कि मेरे भक्तों ने कहां कहां किस किस को श्राप दे रखा है, इस यूनिवर्स में उस यूनिवर्स में कहां जाना है, कैसे जाना है, किसका टाइम है। ऐसा भी नहीं है प्रॉब्लम कि दोनों का टाइम इकट्ठा आ गया, एक जगह पहुंच गए दूसरी जगह रह गए, नहीं नहीं नहीं, हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। उनको कोई वाईफाई के कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई डाटा कार्ड की जरूरत, यहां से खंभा गिर गया तो वाईफाई नहीं चल रहा है। उनके सारे परमात्मा हमेशा 24 आवर्स काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं अभी सो रहे थे, अभी नहीं चल रहा, अभी ऐसा नहीं, सब कुछ पता है उनको, ज्ञाता है हर शरीर के। तो अपने भक्तों की हेल्पलेसनेस को भी जानते हैं, उनके असहाय स्थिति को भी जानते हैं, उनके हृदय के भाव को भी जानते हैं। ये तो हमारी कमी है कि हम लोग उस परसेंटेज का समर्पण नहीं करते हैं भगवान को। हम लोग भौतिक जगत के एक तरफ के भौतिक लाभ, भौतिक सुख है कि नहीं, जैसे हम कथा सुनते हैं ना कि एक बार एक शादी थी, सब लोग गए एक गांव से दूसरे गांव जाना था, बीच में नदी थी, सारे बराती बैठे थके हुए थे, पैदल चल चल के वहां पहुंचे, पैसे की भी बात हो गई, चलो जी चलते हैं, उसने चप्पू चलाना भी शुरू किया। अभी सुबह जब आंखें खोली तो शादी वाले वहां परेशान कि पहुंचा नहीं दूल्हा, और ये लोग देखते हैं हम तो वहीं खड़े जहां से चले थे, यहां खुली तो क्या चक्कर था, पता चले वो लंगर हटाना भूल गए थे। चप्पू तो चल रहा था, लंगर नहीं हटाया था, हवा तो सीधी अच्छी चली रही थी, सबको लग रहा चल रहे हैं। तो वही हमारा चक्कर है, हम भी एक ही जगह खड़े हैं, कब से जन्मों जन्मों से इसी संसार में पड़े हुए। कारण क्या है, चप्पू चल रहा है, कर्म हो रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, भौतिक आसक्तियों का, मटेरियल डिजायर्स का, यहां के भोगों का लंगर जो है वो ही लगा हुआ है। इसलिए हम लोग जब थोड़ी बहुत भक्ति कर भी लें, थोड़ी माला कर भी लें, तो तुरंत हम लोग जो फलाशक्ति वाली मेंटालिटी हमारी कि भगवान मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, इधर 2 घंटे लगाता हूं 800 रुपए मिलते हैं, इधर 3 घंटे लगाता हूं 10,000 मिलते हैं, इधर घर में लगाता हूं थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूं तो बच्चों का प्यार मिलता है, इधर तो मैं सब कुछ लगा रहा हूं 2 माला 4 माला 16 माला कर रहा हूं, मंदिर भी आ रहा हूं, अब क्या मिलेगा मुझे, मेरा क्या, मेरा नंबर कब आएगा। तो हम लोग इस प्रकार फलाशक्ति भावना से हर चीज करते हैं, हमें लगता है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सेल्फलेसली इन्वेस्ट कर दिया, मंदिर आ रहा हूं भगवान खुश तो बहुत होगे तुम आज, ऐसा भी होता है कि मैं आया हूं तुम्हारे मंदिर, ये स्थिति है। और जो थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रसन्न भी हो जाए कि हाँ ये ढीठ आ गया मेरे पास, तो उसकी जगह भी कहते हैं भाई एक्सचेंज ऑफर में क्या दे रहे हो। तो जो इस संसार का लंगर है ना जो हमारा कि ये चाहिए वो चाहिए, वो खत्म नहीं होता है और वो हमें ले डूबता है। तो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। और इस प्रकार के शाप जो भक्त लोग देते हैं उसका नुकसान नहीं होता। चित्रकेतु को मिला शाप, असुर की उसमें चले गए, क्या नाम था उनका, वृतासुर, और असुर के शरीर में मतलब देह में मिल गया, फिर भी इंद्र को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भैया मार लो इंद्र, मारो कोई दिक्कत नहीं है, मरने के बाद क्या होगा, मुझे मालूम है मैं दोस्त भगवान से मिलने वाला हूं, ये शरीर तो नाशवान है। असुर ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि एक लेक्चर या होते ही भक्तों को लेक्चर कर करते हैं कि एक होना चाहिए पूरा कि सेमिनार होना चाहिए, लर्निंग फ्रॉम डीमंस, लर्निंग फ्रॉम टीचिंग ऑफ डीमंस। कितने कितने असुर हुए, उन सब ने भी ज्ञान दिया कुछ ना कुछ। हिरण्यकश्यप भी ज्ञान देकर गए आत्मा का, कंस भी बोल रहा है किनको, वासुदेव को, शरीर है कुछ नहीं है, आना जाना लगा रहता है। रावण भी ज्ञान दे रहा है, रावण ने भी ज्ञान दिया। आप जिसमें वृतासुर की बात करो, क्या बढ़िया ज्ञान दिया, तो पूरे दो तीन सेमिनार तो इसी पे होने चाहिए कि असुरों ने क्या बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया। कहते ना चाणक्य पंडित जी कहते थे कि सोना अगर नाली में भी पड़ा हो तो उसे उठा के हमें दे देना चाहिए, साफ करके हम मंदिर में लगा देंगे। तो आप लोग मत रखना, हमें ले आना। तो कहने का मतलब क्या कि अच्छी चीज अगर कहीं से भी मिले तो उसे लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, है ना। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, हर चीज से सीखा। पक्षी से क्या सीखा, आसक्ति अगर किसी से हो जाए, अगर तुम्हारे पोजिशन है, उन्होंने मांस का टुकड़ा देखा पक्षी के मुंह में, वो उड़ने लगा तो अचानक भाई बंद रिश्तेदार दोस्त दुश्मन सारे उसके पीछे टूट पड़े, उसका वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए बेचारा इधर जाए बचने की कोशिश कर नीचे जाए। देखा कभी आपने ऊपर देखते हो कभी आसमान में पक्षी उड़ते, अभी तो नहीं देखते, अब तो केवल उस पर देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं। मैं एक बार जा रहा था तो मैं किसी के यहां रुका, तो मैंने देखा जब मैं किसी से काम पूरा हुआ तो बाहर निकला, तो मैंने देखा रिक्शे पे दो लड़कियां जा रही हैं, आपस में बात नहीं कर रही हैं, ऑटो में जा रहे हैं उसमें लगे हुए, रिक्शे वाला कान पे लगा हुआ है, और गाड़ियों के अंदर लोग पीछे तीन लोग बैठे हैं इधर इधर इधर, और ड्राइविंग वाला भी बेचारा लगा हुआ है। मैं हैरान, मेरे को सॉरी लगे, फ्रूट कोई खरीदने नहीं आ रहा तो फ्रूट वाला लगा हुआ है। मैंने कहा कमाल है, क्या जमाना आ गया। तो मेरे जो जिन भक्त का मैं इंतजार कर रहा था वो आए, मैं कहा उनको बताता हूं, मैं कहा हरिवल प्रभु देखो वो भी लगे। तो कहने का क्या मतलब है, पहले लोग ऊपर देखा करते थे कई बार, अभी तो वो भी नहीं देखते लोग। तो आकाश में अगर कभी आप जाओ तो देखोगे कि कई बार किसी के हाथ में कुछ आ जाए तो कुछ पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो दत्तात्रेय ने तो वहां से सीख लिया, हम कहां से सीखे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने देखा कि उस पक्षी ने जब वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो शांति 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 हो गई। सारे जो दोस्त थे वो चले गए, आपके रिश्तेदार जो आए थे, मैं भी आपका रिश्तेदार हूं, मुझे भी कुछ दे दो, मैं तो आपके चाचे के मामे के नाने के भाई का साले का देवर लगता हूं। ऐसे ऐसे रिश्तेदारी निकाल के मांस का टुकड़ा लेना चाहते थे, लेकिन जब छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो इनकम टैक्स वाले पीछे पड़े थे, सेल टैक्स वाले भी पड़े हुए थे, गवर्नमेंट वाले भी पड़े हुए थे, पॉलिटिशियन भी पड़े थे हमको दो। तो जब छोड़ दिया तो क्या हुआ, शांति हो गई। किसी गरीब के पास कोई टेंशन देने वाला नहीं आता व्यक्ति, है ना, कि सर मुझे कुछ उधार दे दो, मुझे लोन दिलवा दो, मेरे को अप्रोच लगवा दो, कोई नहीं आता गरीब। गरीब व्यक्ति रस्ते में भक्ति कर सकता है। नाराज जी बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि वास्तव में निर्धन परिवारों में तो भक्त लोग भी बेहिचक चले जाते हैं, है कि नहीं। निर्धन परिवारों में, निर्धन के वहां तो उसको मालूम है कि इधर तो मुझे मेरा सत्कार भी करेंगे, जल भी पूछेंगे, दो मिनट भगवान की चर्चा भी कर सकता हूं। लेकिन धनी परिवारों में तो उनकी नेम प्लेट लगी बाहर, कुत्तों से सावधान, उधर तो गार्ड भी खड़ा है, मूछू इतनी खतरनाक मूछे, उसको देख के डर जाते कि अंदर जाऊं ना जाऊं, पूछू ना पूछू, तो नहीं जाते भक्त लोग उनके। तो लिखा है ऐसा, तो लेकिन अगर कोई धनी व्यक्ति है और सत्कारी है, सदाचरण वाला है, भक्तों का सम्मान करता, तो बुलाता है भक्तों को अपने घर पे, आइए हमारे घर। श्रीमद् भागवत के 34 स्कंध में लिखा है, जिन परिवारों में भक्त लोग अपने चरण नहीं डालते या जहां भक्तों को इन्वाइट नहीं करते, उनके परिवार किस प्रकार है, उस शुष्क पेड़ के समान जिस पर अजगर और सांप लटके हुए, ऐसा परिवार है। बताते हैं घर में गृहस्थी में व्यक्ति अगर शुद्ध भक्तों का स्मरण भी करता है तो भी पवित्र हो जाते हैं परिवार उनके, स्मरण करने से, भक्तों का स्मरण करने मात्र से। तो उनको बुलाकर आसन देना, जल देना, उनके पाद उनका प्रक्षालन करना, इसका तो क्या फायदा होगा। तो यहां पर रूपा जी भी भक्तों की महिमा का बता रहे हैं कि जब कभी भक्त लोग शाप भी दे दें तो वास्तव में वो नुकसान नहीं करता। किसी अपराध के कारण, किसी उसके पाप के कारण अगर शाप मिल गया तो भक्तों के द्वारा शाप मिलने का मतलब यह है कि फायदा ही होगा, फायदा मतलब गति तुरंत हो जाएगी। तो यहां पर भी जब शाप दिया, पहले भगवान जब आए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से क्या करा, जिस मुंह से उन्होंने भगवान उनको घड़ियाल ने जो है हाथी का गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था, तो पहले उसको मुंह काट दिया, मुंह काटकर उसको खत्म किया। और जैसे काटा तो तुरंत वो घड़ियाल ने कौन सा रूप ले लिया, वापस गंधर्व का, और वो वापस गंधर्व लोग चला गए। वाह। और यहां पर गजेंद्र को छुड़ाने का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि प्रार्थनाओं में उसने कहा था भगवान मुझे ना बचाना नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि वह पैर छूट जाए और मैं फिर बाहर आ जाऊं और फिर वह परिवार वाले मुझसे चिपक जाए। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे क्या करना, छोड़ना नहीं अधमरा, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं, आप क्या करना मेरा उद्धार ही करना, मुझे तो अपने धाम बुला लेना। इस संसार में तो बार बार यूनिफॉर्म मिलेगी, बार बार बच्चे होंगे, बार बार उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, अब नहीं चाहिए, सब देख लिया संसार। कितनी कितनी योनियों में हम लोग वही रिपीटेड वही सब करते आ रहे हैं, ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग स्लीपिंग, हर योनि में किया है, हर पशु योनि में किया, हर पक्षी योनि में भी यही किया है, अब मनुष्य योनि में यही कर रहे हैं। हमें लग रहा है मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा मुझे निकाल देना। तो भगवान ने क्या करा, उनको छुआ गजेंद्र, क्योंकि जब लड़ रहे थे बाहर निकाला अपने हाथ से, तो छूने से उसका उद्धार हो गया। गजेंद्र को क्या प्राप्त हुआ बता रहे हैं आज, गजेंद्र को भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ। और क्योंकि भगवान अब उपस्थित है यहां पर, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहां पर क्या लिखा है, जैसे उद्धार किया तो सारे ऋषि गंधर्व ब्रह्मा तथा शिव ये सारे पहुंच गए और क्या करा, पुष्पों की वर्षा करे। तो भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवलोक तो बस इसके ऊपर वाला देवलोक है, भोरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तो यहां पर रहते हैं ये लोग, इनको भी अपनी सेवाएं करते हुए डिपार्टमेंट हट जाए, ये जो काम करते करते ये भी कई बार भूल जाते हैं क्या कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कई बार भूल जाते हैं ये लोग, इसलिए कई बार अहंकार आ जाता है, कई बार द्वेष हो जाता है, कई बार असुरों के कारण दिक्कत में आ जाते हैं, है ना। तो जब कभी दिक्कत होती है असुरों को भगवान बलशाली करके उनके पीछे पड़ा देते हैं, इनको समझाओ फिर मेरे पास आएंगे, हाँ हमसे नहीं हो पा रहा तो ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी ने हमें क्रिएट किया, ब्रह्मा जी हमें बचाओ, ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा मेरे साथ आओ, तो फिर कहां जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं और स्तुतियां करके पुरुषोक्त गाते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं कि भगवान आप ही ने हम सबको बनाया, आपने संसार को बनाया, तीनों लोगों को बनाया, हमारे हृदय में भी आप हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, हर तरह की प्रार्थना करते हैं। और फिर कहते हैं काम बताओ, कहते हैं भगवान ये जो देवता लोग आए बड़े परेशान हैं, ये नाना प्रकार के असुर जो है इनको पंगे ले रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, इनको मार रहे हैं। तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा बोल दो इनको, अब मैं फिर से एक अवतार लेने वाला हूं, है ना। तो फिर इस प्रकार उनको कहते हैं शब्द मिल जाता, वाह भगवान आने वाले हैं, आवाज सुनिए, आवाज सुन के फिर मस्तियां करते हैं, ठीक है आने वाले हैं भगवान, कब आएंगे। तो कभी हिरण्यकश्यप उनको तंग कर ऐसे डरते थे, बड़े परेशान थे, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे, स्तुतियां करते थे। और जो भगवान प्रकट होते थे तो बड़े खुश होते थे, है ना, वराह रूप में आए, है ना, हिरण्यकश्यप जिस भी अवतार में आते थे फिर स्तुतियां करते थे। और भगवान जब असुरों को मार देते थे तो क्या करते थे, फिर ये देवता स्तुतियां करते थे, यही तो है भगवान, मालूम है ये, हाँ ये हमारे भगवान, जय इनकी स्तुति करके बड़े खुश होते, दर्शन नहीं होते। तो तब जाके फूलों से इनका स्वागत करना, डंडुबी बजाना, नगाड़े बजाना, पूरा उत्साह से अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व स्तुतियां कर रहे हैं सुंदर कंठों से भगवान का, तो ऐसा माहौल बन जाता है जब असुरों का वध करते हैं। या अब यहां पर भक्तों की रक्षा करने के लिए जब भगवान आए तो शिव जी ब्रह्मा जी सारे देवता लोग सब शुरू हो गए भगवान की स्तुतियां करना। तो इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और देवतागण स्तुतियां करते हैं हम देवता तो नहीं है लेकिन स्तुतियां हमें इसलिए करनी चाहिए, प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि हमारी दयनीय स्थिति है, देवताओं को तो फिर भी दर्शन हो जाते हैं, हमारी तो स्थिति बड़ी खराब है। तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग अपना समर्पण भाव भगवान के प्रति बढ़ाएं, और वो कैसे पढ़ेगा, जब श्रीमद् भागवतम इत्यादि का नियमित रूप से श्रवण करेंगे और इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान और भगवान के भक्तों का संबंध, तब भगवान की नेचर पता चलेगी कि भगवान किस वृत्ति के हैं, किस तरह के भक्तों को पसंद करते हैं, अपने भक्तों से चाहते क्या है, फिर हम चाहेंगे कि हम वैसे हों, है ना। कितने लोग भगवान को प्यारे होना चाहते हैं? अच्छी बात है, हम सबको भगवान को प्यारा होना है। कई लोग शायद समझ नहीं पाए इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। भगवान को प्यारा होना है कि नहीं होना? अब दोबारा हाथ खड़ा कर, कितने लोग भगवान को प्यारा होना है? आधे कम हो गए, कहां के बाकी। तो हम सबको भगवान का प्यारा होना है, क्योंकि अगर भगवान के प्यारे हो गए तो क्या होगा, भगवान के साथ रहेंगे। भाई तुम्हें जो प्यारा लगता है तुम उसको अपने साथ रखना चाहते हो ना, तो अगर हम भगवान के प्यारे हो गए तो, और भगवान को प्यारे हो गए तो क्या होगा, भगवान अपने साथ रखेंगे, है कि नहीं। राम नाम, हाँ, तो डरते क्यों बोलने में? नहीं नहीं ये तो शाम हो, ये स्लोगन, ये पर्टिकुलर श्लोक जो है ना, तभी बोलते हैं कब, जब चार लोगों के ऊपर होता है, राम नाम सत्य है सत्य बोलो, वहां अच्छा लगता है। अरे भाई जो नीचे पकड़ के खड़ा वो भी बेचारा बोल रहा है ठीक है जी सत्य है सत्य है, दोबारा नहीं बोलेगा वो, छोड़ के आ गया जला दे दिया, घर में आके नहीं लेगा कभी नाम। पंडित जी को बोलेगा 500 रुपये और पकड़ो, 3 दिन में टाउका दुकान खोलनी। ये केवल सेंटेंसेस वहां बोलने के लिए रह गए। तो ये सत्य है इसलिए सत्य का दर्शन रोज करना है। सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत पावनकारी है और बहुत मंगलकारी है भगवान के नाम, तो इसका जप करना चाहिए, इसका कीर्तन करना चाहिए। खाली जाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, रोज बोलना चाहिए। इसके अलावा जो है आज जिस तरह के भक्तों की हम बात कर रहे हैं उसी उन्हीं भक्तों में एक ईश्वरपुरी जी हुए थे, उनका आज तिरुभाव दिवस है। ईश्वरपुरी जी चैतन्य महाप्रभु के क्या थे, गुरु थे। अब देखिए भगवान स्वयं जब यहां पर आते हैं तो भी एक इस प्रकार का आचरण पेश करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस प्रकार गुरु परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। तो चैतन्य चरितमृत में 9वें अध्याय में आदि लीला के, इसका थोड़ा सा प्रपट रूपा जी ने दिया, 5 मिनट लेकर पढ़ेंगे। इसके बाद भक्ति का बीज ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं मालिक थे उस भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बने। तात्पर्य शिल गोपाल जी कहते हैं, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री ईश्वरपुरी कुमारहट के निवासी थे, जहां अब कामरहट नामक रेलवे स्टेशन है। पुराने जो नाम हुआ करते थे आजकल वो इतने चेंज हो गए हैं कि कई बार लगता है कि इसका कुछ संबंध नहीं है पुराने नामों से। भारत देश का नाम भी लोग इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में है, और वैसे हिंदुस्तानी बोले हिंदुस्तान भी बोल रहे हैं, लेकिन भारत नाम हमारे शास्त्रों में भरत महाराज जो हुए हैं उनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा। तो हमें अपनी बातचीत में भारत शब्द बोलेंगे तो उसका ज्यादा फल मिलेगा या लाभ पहुंचेगा, हिंदुस्तानी या इंडिया बोलने का नहीं मिलेगा इतना लाभ, है ना। स्मरण भी नहीं होगा, हिंदुस्तानी बोलकर क्या लगेगा। हम बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सुना आपने, एक हिंदुवादी संगठन है वो बोलता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उनके स्वदेशी जागरण मंच नाम की चीजें भी चल रही है, अपने देश का खाओ अपने देश का पहनो अपने देश में उत्पादन करो और अपने देश में ही मट मिट जाओ। लेकिन उनको नाम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, वो बहुत नफरत करते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इस देश को प्रॉब्लम करी कन्वर्ट किया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नामकरण को गर्व महसूस करते हैं। वो बेचारे सिंधु नदी नहीं बोल सकते थे, बोलते थे हिंदू नदी के उतरले, पैसे को पह और सप्ताह को हफ्ता बोलते थे, तो उन्होंने बोला ये सिंधु हिंदू नदी के उधर वाले, तो वो आज हिंदू हिंदू बोलकर हमारा नाम हिंदू पड़ गया। और हम क्या फील करते हैं, हम कौन है, हिंदू, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और नाम ले रखा उन लोगों से, नामकरण उन्होंने किया हुआ हमारा, है कि नहीं। तो ये मानसिकता भी ठीक नहीं है, ये भी दासता का या गलत प्रोनाउंसिएशन का नाम लिए घूम रहे हैं। तो भारतीय कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि भारत देश भरत राजा भरत से आया है और ये पूरा संसार भारत था, भारतवर्ष कहा जाए, भारत खंडे भारत है ना, तो ये भारतवर्ष इस तरह से है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट नाम है। और दूसरा नाम इंडिया बोलते हैं, ये भी अंग्रेज लोग छाप दे करके कि लीजिए याद रहेगा आपको कि हम लोग आए थे यहां पर है ना, और हम लोगों ने 250 साल आपके ऊपर खूब राज किया, जूते साफ करवाए और ये सब किया, तो बोलते हैं लोग इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो भी नाम जो है दिया गया है। और दोस्तों को भी नाम देते उन्होंने चेंज कर दिए, श्रीलंका को भी कुछ देने की कोशिश करी थी, उन्होंने बोला नहीं हम तो रावण के द्वारा दिए गए नाम के हम नाम करना, तो श्रीलंका नाम रखा है। और पाकिस्तान को भी कुछ देने की कोशिश करी थी, तो पाकिस्तान ने भी अपना वही नाम रखा जो रखना चाहते थे, बस हमारे देश के लोगों को हर चीज इंपोर्टेड अच्छी लगती है तो इनको लगा कि भाई इंडिया ही होना चाहिए, ठीक है, बड़ी स्थिति है। तो यहां पर वो नाम था, वहां पर रेलवे स्टेशन भी है जो कलकत्ता के पूर्वी विभाग में के पूर्वी रेलवे से संबंधित है। ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, वे श्री माधवेंद्र पुरी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। श्री चैतन्य चरितार्थ में के अंतिम भाग के 8वें अध्याय में कुछ लिखा है, क्या ईश्वरपुरी गोसाई कर श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करेन मूल मूत्राधिमार्जन, निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाये अनुषण, तुष्ट है न पूरी तार केला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तुमर हऊ का प्रेम धन, सही है ते ईश्वरपुरी प्रेम सागर। इस प्रकार जो है उन्होंने बताया, श्री माधवेंद्र पुरी अपने जीवन के अंतिम समय में अशक्त हो गए थे और हिलडुल नहीं सकते थे, ईश्वरपुरी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करते थे, यहां तक कि उनका मल मूत्र भी वे स्वयं साफ करते थे। देखिए गुरु के प्रति समर्पण का भाव, उस अवस्था में जब हिलडुल नहीं पाते थे, उस अवस्था में भी शिष्य क्या कर रहा है, अपने गुरु का मल मूत्र भी साफ कर रहा है। और ईश्वरपुरी ने सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और श्री माधवेंद्रपुरी को उनके अंतिम समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कराकर कथा कर उनके शिष्यों में से सर्वाधिक सेवा करें। ये शिष्य और क्या कर सकता है कि अपने किसी भी निकट संबंधी का या गुरु के लिए कथा का श्रवण करा रहे अंतिम समय में भी। इस तरह माधवेंद्रपुरी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे प्रिय बालक, भगवान कृष्ण से मैं यही विनती कर सकता हूं कि वे तुम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार ईश्वरपुरी अपने गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर में महान भक्त बन गए। एक भक्त अगर किसी को आशीष देगा तो वो इस तरह का आशीष देगा कि जिससे कि उसका प्योर डिवोशन भक्ति भगवान के प्रति उच्च स्तर पर पहुंचे। भौतिकतावादी व्यक्ति का अगर दूधो नाव पुतो फलो या ये मिले आपको वो मिले, भौतिक चीज है, लेकिन अगर भगवान के अच्छे भक्त होंगे उनकी हम सेवा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, अपनी अच्छी से अच्छी चीज देना चाहेंगे, है ना। कोई अगर आपको सेल्फलेसली सेवा करता है आपकी, तो आप चाहोगे मैं उसको सब कुछ दे दूं, है ना। उसी तरह जब भगवान के भक्तों की कोई सेवा करता है तो भगवान के भक्तों के पास तो कुछ भी नहीं होता, कोई मटेरियल पोजिशन भी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है कुछ, वो क्या देते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास तो भगवान का नाम है और हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं आपके लिए कि भगवान आपको क्या दे, अपना प्रेम दे। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त किसी के लिए कुछ मांगते हैं ना, तो भगवान को बाध्य होना पड़ता है उनको देने के लिए, इसलिए शुद्ध भक्त की बड़ी महिमा है। हो सकता है, ये भी बताया जाता है, तोमार जैसे चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है कि भगवान के प्रति अगर कोई अपराध कर दे, तारे कृष्ण नाम है ना, हाँ कह रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण के प्रति भी अपराध कर दे तो भगवान का नाम ले लेके वो ठीक हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध कर दे तो फिर उसका निस्तार नहीं है। तो अगर भगवान के भक्तों की हम सेवा करते हैं, हमसे सेवा क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग जिस संसार से आए हैं या जिस संसार में हैं, उस संसार में हमारा पालन पोषण हुआ है ऐसे वातावरण में जहां पर गलतियां देखने वाले को चतुर कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं सबसे पहले उसकी गलतियां देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। इसलिए अपने को सुपीरियर समझने की चेतना से हम लोग जब किसी को देखते हैं, चाहे उसके अंदर कितने गुण हो, हमारे अंदर अगर 4 गुण हैं, उसके अंदर अगर 20 गुण हैं, तो भी हम लोग कुछ ना कुछ अवगुण ऐसे निकाल देंगे और ये देखेंगे कि देखो ये अच्छे गुण तो मेरे अंदर हैं, इसके पास नहीं है। तो अवगुण देखने की जो वृत्ति है उसका कारण क्या है कि हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हम डरे हुए कि कोई मेरे से ज्यादा नाम ना कमा ले, मेरे से ज्यादा कोई किसी की पूजा ना होने लग जाए, मेरे से ज्यादा कोई समझदार ना कहलाए, तो हम दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं। तो ये कमी देखने की वजह से क्या होता है, हमारी टेंडेंसी बन जाती है। फिर जब इस संसार से हम लोग भक्तों के समाज में आते हैं तो क्या होता है, यहां पर भी वही वृत्ति होती है, ये अच्छा नहीं गाता, इसको हारमोनियम बजाना नहीं आता, ये मृदंग ठीक नहीं बजाता, ये व्यक्ति देखो कैसे खड़ा है, इसके कपड़े ठीक नहीं है, इसने धोती टेढ़ी पहनी है ना, खाता ऐसे है, पीता ऐसे है। तो हम लोग उसके अवगुणों को देखकर अपने को सुपीरियर समझना चाहते हैं, तो इस प्रकार अवगुण देखकर हम लोग अपराध करते हैं, फिर वो वाणी में भी आ जाता है। तो बचना चाहिए इस वृत्ति से। तो यहां पर कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि भगवान के आप भक्त बनो, मैं विनती कर सकता हूं कि भगवान तुम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ईश्वरपुरी अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर के भक्त बन गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने गुरुअष्टक में लिखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतो। गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा का वर मिलता है, कोई गुरु की कृपा के बिना भी उन्नति नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण बनता है, जैसा कि इस उदाहरण में स्पष्ट है। वैष्णव की रक्षा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं, किंतु यदि वह अशक्त प्रतीत हो या शरीर में जान ना रहे उस तरह से, तो इससे उसके शिष्यों को सेवा करने का अवसर मिलता है। ईश्वरपुरी ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से वे इतने महान पुरुष बन गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु दीक्षा देने से पहले वे नवदीप गए थे और गोपीनाथ आचार्य के घर में कुछ महीने रुके थे, तभी चैतन्य महाप्रभु का उनसे परिचय हुआ था। कहा जाता है कि तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा करते थे। इसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 11वें अध्याय में मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बना जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमार हट गए और उनके जन्मस्थल से कुछ मिट्टी लेते आए, जिससे वे सावधानी से रखते थे और नित्य उसमें से कुछ अंश प्रतिदिन खाया करते थे। कितना समर्पण है गुरु के प्रति कि जहां वो पैदा हुए थे वहां की मिट्टी लेके अपने पास रखी हुई थी और रोज थोड़े से कण मुंह में डालते थे। चैतन्य भागवत आदि खंड के 17वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। यह अब भक्तों के लिए प्रथा बन गई है कि भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत का अनुसरण करते हुए वहां जाते हैं और उस स्थान से कुछ मिट्टी ले आते हैं। तो इस प्रकार जो है ईश्वरपुरी पाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी और वो जानते भी थे कि स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान की जो माया है वो थोड़ा कई बार भुला भी देती थी। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बाद में बोला कि अल्टीमेटली तुम ही तो मुझे ज्ञान दे रहे हो, तब मैं तुम्हें कुछ दे पा रहा हूं ना, कानों में मंत्र देकर इस तरह से। यहां पर सांदीपनि मुनि भी आए तो भी उन्होंने भगवान तो लगता है कई बार अरे भगवान को ज्ञान की क्या आवश्यकता है, भगवान को दीक्षा की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान ने कहा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् प्रियजनवितः, कि जैसे जैसे समाज के श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं सामान्य जन उसको अपने व्यवहार में लाते हैं। तो महाप्रभु या जब भी कोई अवतार हुआ तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, गुरु को स्वीकार किया, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार किया, ताकि लोग आगे जब आए तो वो भी इस तरह से गुरु को स्वीकार कर सके। गुरु की सेवा कैसे करनी वो ईश्वरपुरी पाद ने सिखाया, तो कम से कम उनके जीवन से हम ये सीखें कि हमें वैष्णवों की सेवा करने के लिए पूरा बड़ा ध्यान रखना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से पूरे भाव के साथ वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर वैष्णवों ने बोल दिया कि भगवान इसको उठा लो तो भगवान क्या करेंगे, उठा लेंगे, है कि। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की।